ओम शांति। जिस तरह बारिश की बूंदें सूखी धरती को हरियाली से ओतप्रोत कर देती है, ऐसे ही आत्मा रूपी धरातल में जब सूखापन आता है तो ये इंद्र की वर्षा हमारी सारी योग्यताओं को उजागर कर देती है। हमारी आदरणीय इंदिरा दीदी जो भिलवाड़ा में हैं, अपनी सेवाएं दे रही हैं, भिलवाड़ा सेवा केंद्र की इंचार्ज हैं, पिछले 43 सालों से वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं और हमारे कल्चरल विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो जोरदार करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करेंगे, आदरणीय इंदिरा दीदी।
बाप दादा की अंतिम मिलन मेला में आप सभी पधारे हो, बाप दादा से मधुर मिलन भी मनाएंगे और सीजन की विदाई भी देंगे, इसके लिए आप सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से बाबा के घर में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। यहाँ बाबा के घर आए हैं तो हमारा एक एक पल जो है वो सफल होना चाहिए। ऐसा ना हो आए थे प्रभु मिलन को और ओटने लगे कपास, कहावत है ना। इधर उधर की देखें, इधर उधर की सुने, कुछ व्यर्थ चिंतन करें तो हमारा समय ऐसे ही चला जाएगा। याद रखें, ये मधुबन है मधुसूदन का, मधुसूदन साथ है, भक्ति मार्ग के मधुबन में जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वहां के मधुबन में जाते हैं तो कोई मधुसूदन नहीं मिलता है, वहां तो पत्थर की मूर्ति, मंदिर के दर्शन करके आ जाते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में हम सभी बाप दादा से मिलन मनाएंगे, मधुसूदन से मिलन मनाएंगे। यहाँ आते ही यहाँ की बाप दादा की त्याग तपस्या और सेवा ये सब सामने आ जाती है। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यहाँ सभी को इतना पावरफुल वायुमंडल बनाना है, वैराग्य वृत्ति का ऐसा वायुमंडल बने जो सब जगह वैराग्य की लहर फैलाने का बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है। तो केवल सेंटर तक ही नहीं, पूरे विश्व तक, हमारे सेंटर, हमारे घर, पूरा विश्व बेहद के वैराग्य वृत्ति वाला हो जाए, क्योंकि इस बेहद की वैराग्य वृत्ति में ही सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण है। तो बाबा से जितना जितना प्यार होगा उतना ही वैराग्य बढ़ेगा। सच्चा प्यार है, बाबा के साथ हमारा सच्चा प्यार है तो कितनी भीड़ है, 25,000 की भीड़ के बीच में भी हमें अपना लक्ष्य याद रहे। बाबा ने क्या लक्ष्य दिया, क्या अभ्यास करने का बोला, कि शरीर में रहते हुए भी ज्योति बिंदु आत्मा समझ करके निराकारी अवस्था बना करके ऑफिस आकार में आना। तो जितना निराकारी अवस्था में रहकर के साकार में आएंगे उतना ही निरंकारी और निर्विकारी बनते जाएंगे। और ये अवस्था कैसी है, एकदम सेफ अवस्था, जिसको बाबा कहता ना कि बाहर के वातावरण का असर उसके ऊपर नहीं होता है। तो ऐसी श्रेष्ठ अवस्था बाबा ने हम बच्चों के दी है बनाने के लिए। आप सभी करते हैं, बाबा के बच्चे हैं, आप सभी अवश्य अभ्यास करते हैं, देखिए यहाँ आने के बाद इस अभ्यास के ऊपर अंडरलाइन लगानी है, सदा काल का अभ्यास करना है। ऐसा सदा काल का अभ्यास हो जाए, हम सभी को बाबा ने बताया है कि हमारा फ्यूचर क्या है। आप सभी जानते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है फ्यूचर में, महाविनाश। सभी को पता है ना, बाबा ने हम बच्चों को अच्छे से ये पाठ पक्का कराया है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, महाविनाश। और साथ साथ क्या होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना भी हो रही। तो विनाश, जो विनाश है वो मुक्ति का गेट, और स्थापना है जीवन मुक्ति का गेट। चेक करें कि मैंने क्या विनाश किया। सबसे पहले अपने विकर्मों का विनाश हुआ, और स्थापना क्या हुई, हमने श्रेष्ठ भावनाएं, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, प्रेरणादायी कर्म, ऐसी श्रेष्ठता, दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां की स्थापना की। यही स्थापना हमें जीवन मुक्ति के अंदर काम में आएगी। तो स्थापना और विनाश, इसके लिए बाबा क्या कहते हैं, एक आंख में मुक्ति को और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। तो ये जो प्रैक्टिकल देखेंगे, फ्यूचर के अंदर ये देखेंगे, हमारा फ्यूचर है वो फ्यूचर के अंदर दिखाई देगा, तो ऑटोमेटिकली लोगों को वैराग्य आएगा। दुनिया देखती है, कभी ब्राह्मणों के अंदर वो आया कि नहीं आया, वो कहेंगे इनके कारोबार तो और हो रहे हैं, इनके शब्द तो कुछ और निकल रहे हैं, इनकी भावनाएं तो कुछ और हो रहे हैं, इनसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, इनसे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे मानेंगे। इसलिए हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर से दिखाई देगा, तब लोगों के अंदर भी वैराग्य वृत्ति आएगी। और बाबा वैराग्य सिखाने के लिए हम बच्चों को क्या कहता है कि बच्चे दुनिया के जो दुर्गति के जो भी रीति रस्म है, इसको भी हमें वैराग्य की दृष्टि से देखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा ने कहा, जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते थे, बहुत भक्ति का रस लेते थे और इतना भावना से भक्ति करते थे, भगवान को बुलाते थे, याद करते थे, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आता गया, हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता गया बढ़ता गया, तो भक्ति की रीति रस्म से सबसे वैराग्य आ गया। और आज किसी को कहें कि भक्ति करो तो हमसे होगी, नहीं होगी। तो जैसे वैराग्य आया वैसे की हमारी याद की स्पीड बढ़ गई। और भक्तों को देखो, आज भी कितना शरीर को कष्ट देते हैं, कितना धन लगाते हैं, कितना समय लगाते हैं, लेकिन सब कुछ लगाते हुए भी क्या अटूट याद रही। तो जितना जितना वैराग्य होता जाएगा, उतना उतना हमारी बाबा के साथ जो याद की स्पीड है वो बढ़ती जाएगी। तो हमें अपनी याद की स्पीड को बढ़ाने के लिए ब्राह्मण जीवन में भी जो जो हमारे रीति रिवाज रस्म हम देखते हैं कि ये दुर्गति वाले हैं, तो इससे भी हमें वैराग्य आना चाहिए। तो वैराग्य की ऐसी लहर दौड़ाओ कि एक दूसरे को सहयोग देकर के भी सहयोगी बनो। आज हम देखते हैं कि अगर थोड़े समय के लिए भी किसी को वैराग्य आता है, तो उस वैराग्य वृत्ति के अंदर उसका जो पुराना स्वभाव संस्कार है वो मर्ज हो जाता है। कई बार आपने किसी के जीवन की लाइफ में देखा होगा, अचानक निकट संबंधी का एक्सीडेंट हो गया, कोई घटना हो गई, ऐसा जोर से वैराग्य आ जाता है कि पुराना स्वभाव संस्कार सब बंद हो जाता है। तो ये वैराग्य वृत्ति की पुराने को समाप्त करने का आधार बनेगी। बाबा कहते हैं अपनी महीन रूप से चेकिंग करो, जितना जितना अपनी महीन रूप से चेकिंग करेंगे और सोचेंगे कि मानो अभी अभी कोई हमें ऑर्डर दे दे, तो क्या उस ऑर्डर के अनुसार हम एवर रेडी हैं? चेक करेंगे कि एवर रेडी है, या तो कोई वस्तु खींचेगी या कोई साथी खींचेगा या कोई स्थान का खिंचाव होगा। तो बाबा कहते हैं इससे भी बच्चों का लगाव नहीं होना चाहिए। वो लगाव की निशानी क्या है? जहां लगाव होगा बुद्धि बार बार वहीं जाएगी वहीं जाएगी। तो हमें बुद्धि के इस लगाव से भी न्यारा होना है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारे शरीर में भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, शरीर से भी न्यारे बनो। फिर विशेषता भी बड़ी आकर्षित होती है कि भाई इसके अंदर फलानी बहुत अच्छी विशेषता है, बोलने की विशेषता है, प्लानिंग बनाने की विशेषता है, काम करने की विशेषता है। तो किसी की विशेषता को भी नहीं देखो, विशेषता भरी किसने? विशेषता भरने वाला कौन है? भरने वाला याद होना चाहिए कि विशेषता भरने वाला आखिर हमारा बाप। कई बार ऐसा भी होता है कि स्वयं की ही विशेषता से लगाव हो जाता है। तो बाबा क्या कहते हैं कि स्वयं ही अगर स्वयं की विशेषता से लगाव हो गया तो क्या होगा? ना कि ये विशेषता ही अभिमान बनकर के प्रकट हो जाएगी। इसलिए हमें इससे भी न्यारा प्यारा रहना है। ये परमात्मा ने भी विशेषता क्यों भरी है? किसी को देने के लिए भरी, ये विशेषता अभिमान दिखाने के लिए नहीं भरी, लेकिन किसी का भला करने के लिए बाप दादा ने हमारे अंदर भरी है। तो बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे ये पुराना तन है और ये पुरानी दुनिया है, इससे भी हमें वैराग्य आना चाहिए। पुराना तन कैसा है सभी जानते हैं, पुराना तन कैसा है? ये खटपट करने वाला तन है, इससे क्या मोह रखे? ये कलयुगी दुनिया का आखिरी तमो प्रधान तन है और दुनिया तो वैसे बहुत आकर्षणमय है। इतना आकर्षण दुनिया के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए ये दुनिया क्या है? ब्राह्मणों के लिए ये दुनिया कब्रिस्तान है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कब्रिस्तान है, इसे वैराग्य आना चाहिए। तो क्या संपूर्ण वैराग्य आता है? जिन लोगों के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है, जिनके अंदर जागृति ही नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? मूर्छित है, मरे हुए हैं। तो ये सारे मित्र संबंधी मरे हुए महसूस होते हैं। जैसे गीता के अंदर बताया ना, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ये सब तेरे सब मित्र संबंधी देख सब मरे पड़े। तो सारे मित्र संबंधी मरे हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं इन सभी से बच्चों को वैराग्य होना चाहिए। और अंत समय की भी पोजीशन बाबा ने हम बच्चों को बता दी है कि जब दुनिया का परिवर्तन होगा तो सारे मनुष्यों के अंदर वैराग्य ऑटोमेटिक आ जाएगा। आज तो क्लास कराना नहीं पड़ती वैराग्य के लिए, लेकिन ऐसा समय आएगा कि समय ही सभी को शिक्षा दे देगा और ऑटोमेटिकली ही सबके अंदर वैराग्य आ जाएगा। और उस वैराग्य के अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा कि परमात्मा का परिचय अपने आप अंदर जाता जाएगा, जो आप सुनाओगे वो अंदर जाता जाएगा। बाबा बड़ा होशियार है। जब शिवरात्रि के पहले एक मुरली चली, बाबा ने कहा शिवरात्रि बहुत धूमधाम से मनाओ। सभी ठंडे ब्राह्मण थोड़े ठंडे बैठे थे कि बहुत सेवा कर ली, लेकिन बाबा ने कहा कि शिवरात्रि इतनी धूमधाम से मनाओ, गांव में भी खूब सेवा करो, सबको परिचय में परमात्मा का संदेश सुनाओ, जगह जगह बड़े कार्यक्रम हो सके तो वो करो, होर्डिंग्स लगाओ। बाबा ने इतना धूमधाम से मुरली चलाई कि सब ब्राह्मणों ने धूमधाम से सेवा की और क्या हेडिंग दिया, धरा के ऊपर भगवान आ चुके हैं। अब लोगों के अंदर बुद्धि जाएगी, श्री बाबा को पता है ना कि वैराग्य की लय शुरू हो गई, तो लोगों के अंदर भी बुद्धि चलना शुरू हो गई ना, धरा पे भगवान आया है, तो ये तो कहां से आया है, था कहां पे है? तो इस तरह से कईयों के फोन आए, तो बाबा भी कहता है कि अंत समय ऐसा वैराग्य आएगा और उस वैराग्य के अंदर ऑटोमेटिकली की परमात्मा का परिचय लोग स्वीकार करेंगे। तो ऐसी बेहद की वैराग्य वृत्ति सारे ब्राह्मणों के अंदर बाबा देखना चाहता है, उनके बोल के अंदर, उनकी भावनाओं के अंदर, उनके कर्म के अंदर वैराग्य झलके, महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी है। तो सारे बेहद के वैरागी महीन रूप से चेकिंग करे तो एवर रेडी है। बाबा कहता है अभी तो साइंस के जो साधन है वो भी इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं, इतना आकर्षण बढ़ गया है दुनिया के अंदर, कभी किसी ने संकल्प में भी नहीं सोचा था कि हर व्यक्ति अपनी जेब के अंदर कैमरा और टेलीफोन लेकर के घूमेगा, आज प्रत्येक व्यक्ति के जेब के अंदर टेलीफोन और कैमरा है, और भी साइंस की इतनी आकर्षक में चीजें बनी है। तो आज के युवा इसको पाने के लिए भी जो दीवानगी उनके दिल में छाई रहती है और उसके पीछे क्या उल्टे सुलटे कार्य होते होंगे और क्या हिसाब किताब बनता होगा, बाबा कहते बच्चे इससे भी वैराग्य वृत्ति आ जानी चाहिए। करण करावन हार बाबा करा रहा है और हम कर रहे हैं, साधन भी जो दिए हैं बाबा कहते हैं साधनों से भी ज्यादा हमें महत्व देना है साधना को, साधन को भी मालिक बन करके इन साधनों को भी उन्नति का साधन बनाना है। तो इस तरीके से बाबा कहते हैं कि बच्चों को अंदर में भूमिका ऐसी होनी चाहिए, अपनापन सारा समाप्त होना चाहिए। अपनापन समाप्त हो और बाबा का पन आ जाए, तो बाबा ऐसा नहीं कि इस चीज को हम आधा रीति से स्वीकार करें, अपनापन समाप्त करना है और बाबापन लाना है। बाबा के बच्चे कई बार इस चीज को आधा करते हैं, अपनेपन से तो वैराग्य करते हैं, जो बहुत सेवा कर ली हमें तो वैराग्य आ रहा है, हाँ ये भी कर ली हमने तो बहुत सेवा कर ली, और सेवा करते जब कोई बात ऐसी आती है सेवा की तो कहते हैं नहीं हमें तो इससे भी वैराग्य, सेवा से भी किनारा कर लेते। लेकिन ब्रह्मा बाप के जीवन को देखो, ब्रह्मा बाप ने क्या किया, अंत समय तक भी सेवा करते रहे, लास्ट दिन भी बाबा ने इतना अच्छी मुरली चलाई। बाबा ने हमें एग्जाम्पल दिया कि अपने लास्ट समय तक भी वैराग्य वृत्ति को धारण करना है, अपनापन मिटाना है। तो मानो किसी का कई कहते भी वैराग्य वृत्ति तो हम धारण करते हैं, भंडारा भी तो उसकी निशानी क्या है, भंडारा भी भरपूर हो और वैराग्य वृत्ति भी दिखे, हमारा भंडारा भी भरपूर हो और वैराग्य वृत्ति दिखे। भंडारा ही भरपूर नहीं होगा तो क्योंकि हमें वैराग्य है तो ये वैराग्य नहीं माना जाएगा। तो अपने पन को भी मिटाना है, जैसे राजा जनक का हम देखते हैं पूरा महल माणिया कितना सुंदर राजा था वो, सब कुछ वैभव संपत्ति बाग बगीचे सब कुछ होते हुए भी हमेशा वो आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ही मिलता था, संतों ने उनसे पूछा कि आपकी इतनी सुंदर अवस्था कैसे है कि आपको ये सभी महल माणियां क्यों आकर्षित नहीं करती है, आपकी बुद्धि वहां अटकती क्यों नहीं है, मित्र संबंधी आपके इतने सब कुछ है, इतना खूबसूरत वातावरण ये क्यों आकर्षित नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि इसका भी मैं राज बताता हूँ। उन्होंने एक दिया दिया, आप सभी जानते हैं, और दिए को इतना तेल से भर दिया और कहा कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए, ये दिया लेकर के जो तेल से छलाछल भरा हुआ है वो दिया लेकर के सारे महल का चक्कर लगा करके आओ। तो जब सारे महल का चक्कर लगा करके आया तो राजा जनक ने पूछा कि कैसा लगा महल, तो क्या उसने उत्तर दिया कि मैं दिए को संभालूं, तेल को संभालूं या महल देखो, मेरा तो सारा समय ही इस तेल को संभालने में रह गया। तो राजा जनक ने जैसे अवस्था बनाई कि अपने इस दिए को, आत्मा रूपी दिए को सदा संजो करके रखो, ये कहीं दुनिया के वातावरण में कहीं फंस ना जाए, कहीं बुझ ना जाए, इसलिए इसकी संभाल करते रहो। जब उसकी संभाल में लग जाएंगे, उस आत्मा रूपी दिए की संभाल में लग जाएंगे तो क्या होगा, कहीं बुद्धि जाएगी ही नहीं, कुछ संसार के अंदर दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए सब कुछ करते हुए हमें इस आत्मा रूपी ज्योति को सदा की संभाल करके रखना है। तो बाप दादा बच्चों को ये सिखाते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं कि हाँ सब अच्छा है हमारा, हमारी सवेरे की क्लास भी अच्छी है, हमें बाबा भी अच्छा लगता है, हमें माहौल भी अच्छा लगता है, हमें मधुबन भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारे अंदर केवल एक कमी रह गई है। और वो कमी कौन सी रह गई है, बस वो थोड़ा सा हमें कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कम है। तो कर्म इंद्रियों के अंदर कंट्रोल कम है तो क्या होगा, गेट चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन खुला रखा, चोर के लिए खुला रखा तो चोर तो आएगा ही ना? तो इस गेट को भी बंद करना है, और अगर गेट खुला रखा तो कैसे माया जीत, प्रकृति जीत कैसे बनेगी। तो माया जीत और प्रकृति जीत बनने के लिए हमें अपने गेट को भी सदा बंद रखना है, और वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा ने एक बात और बहुत अच्छी बताई है ब्राह्मणों को, त्याग भी किया तो समय अनुसार किया, कि बाबा ने जब शिक्षा दी कि उसके अनुसार किया ना। बाबा हम बच्चों को रोज शिक्षा देता है, रोज सवेरे सवेरे मुरली के अंदर वरदान मिलते हैं, स्लोगन मिलते हैं, तो बाबा की शिक्षा ने परिवर्तन किया कि समय ने मार मारी तो शिक्षा धारण की। एक व्यक्ति थे हैं, तो बात उनको इतना आकर्षण था भोजन का, तो यहाँ वहाँ सब जगह भोजन करके आते थे, मीठा भी उनको बहुत पसंद था, तो जब भी जीवनवार कहीं होता था तो खा पी करके मस्त आ जाते थे, ये धारणा उनकी कभी भी पूरी नहीं होती थी। तो बार बार उनको कहा जाता था कि अपना खान पान सही करो तो योग भी अच्छा लगेगा, लेकिन हमेशा इस धारणा के अंदर कमजोरी रही। कुछ दिनों के बाद उनको डायबिटीज हो गई, समय ने ऐसा पंजा मारा, डायबिटीज हो गई। तो फिर इतना उल्लास से सुनाने लगे कि मेरी धारणा अब इतनी पक्की हो गई है, मैं बाहर का कहीं भी नहीं खाता हूँ। तो किसने पक्की की वो धारणा, समय ने पक्की की कि बाबा की शिक्षाओं ने पक्की की। अगर समय ने पक्की की तो नंबर किसको मिलेगा, समय को मिलेगा, आपको थोड़ी मिलेगा, देखिए बाबा ने शिक्षा दी और आपने प्यार से उसको अपनाया तो नंबर किसको मिलेंगे? बच्चों को मिलेंगे। तो बाबा कहता है कि समय हमारा शिक्षक ना बने, रोज बाबा शिक्षक के रूप में हम बच्चों की क्लास लेता है, तो बाबा की क्लास को विद्यार्थी बनकर के अच्छी तरह से धारण करना है। जब बाबा की क्लास के अच्छे स्टूडेंट बनेंगे हैं, तो स्टूडेंट की निशानी क्या होती है? सबसे पहले आएंगे हैं, टीचर के पहले भी आएंगे हैं, मीठे बच्चे शुरू होता है उसके पहले आ जाएंगे हैं, और आकर के बाबा की जो शिक्षा है मुरली है वो सुनेंगे, उसको नोट भी करेंगे। इस तरीके से बाबा की मुरलियों को शिक्षाओं को धारण करेंगे। तो हमें बाबा को शिक्षक बनाना है, अगर नंबर जमा करना है तो बाबा को शिक्षक बनाना है। समय की मार पड़ी और हमें धारणा हुई है तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे है? तो वैराग्य वृत्ति का जो पाठ बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है कि हम बाबा के संपूर्ण बच्चे जिनका चाल चलन वगैरह सभी ऐसे बेहद में रहे है कि सभी को लगे कि ये ब्राह्मण अपने फीचर से कुछ फ्यूचर दिखा रहे थे। हमारे निजार भाई एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हैं फ्यूचर पावर का तो ये फ्यूचर की पावर आप लोगों से दिखे, क्योंकि ये तो संसारी असार है। इस संसार को चाहे कितना भी बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन संसार तो दिन प्रतिदिन पतन की ओर ही जाता रहेगा। कोई सोचता है कि फलाना नेता अच्छा आएगा तो संसार बचा लेगा, लेकिन हम ब्राह्मण जानते हैं कि संसार की गति क्या होने वाली, अच्छे से अच्छा भी आए तो भी इसकी दुर्गति निश्चित है, है? क्योंकि अभी संसार बदल रहा है और इस बदलते हुए संसार के अनुसार हम चलेंगे, बाबा की श्रीमत के अनुसार चलेंगे तो हम आगे 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 बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए अभी हम सभी थोड़ी देर इसी संकल्प से योग के अंदर बैठते हैं कि हम सब बाबा के बच्चे संपूर्ण बेहद के वैरागी है, और इस संगठन में रहते इतनी बड़ी भीड़ में रहते हुए भी हमें अपना अभ्यास करते रहना है कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, निराकारी आत्मा हूँ। तभी हम 5 मिनट कमेंट्री करेंगे और आप लोग सभी अपने स्वस्थिति को धारण करेंगे। ओम शांति। अभी हम सब अपने शरीर को सभी एक झोपड़ी समझें, जिस तरह से कोई तूफान हवा झोपड़ी को तहस नहस कर जाती है, इसी तरह समझे कि शरीर एक विनाशी है, एक झोपड़ी है। एक तेज हवा के झोंके ने इस झोपड़ी को उड़ा दिया, लेकिन इसके अंदर एक दिया जो जगमगा रहा है वो दिया बच गया। तो मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं मस्तक पर चमकने वाली ज्योतिर्मय बिंदु आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप को मन की आंखों से स्पष्ट देखें। मैं चमकती हुई ज्योति हूँ, ये ज्योति जगमगा रही है। मैं पवित्र स्वरूप हूँ, संसार का ड्रामा पूरा होने आया। मैं आत्मा परम धाम से आई थी, मुझ आत्मा ने सृष्टि चक्र का एक चक्र पूरा किया। सर्व शक्तियों को लेकर के आई थी, मेरी शक्तियां भी इस संसार के तमोप्रधान वातावरण में छिन्न भिन्न हो गई। अब मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा के साथ हूँ। शिव बाबा से सर्व शक्तियां मुझे आत्मा के अंदर आ रही है। जो भी शक्तियां मेरी तहस नहस हो गई थी, यह पुनः अनुशासित हो रही है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा के अंदर आ रही है। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान हूँ। शांति की एक पवित्र किरण मुझ आत्मा के अंदर प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। परमात्मा मेरे साथ है, कंबाइंड रूप का अनुभव करें। अपने मन और बुद्धि से स्पष्ट विजुअलाइज करें, मन और बुद्धि की आंखों से देखें। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के एकदम निकट हूँ। परमात्मा मेरे रक्षक हैं, परमात्मा से दिव्य शक्तियां सारे ग्लोब के ऊपर आ रही हैं। विश्व ग्लोब के ऊपर परमात्मा चमकता हुआ देख रहे हैं। वे अपनी समस्त किरणें विश्व ग्लोब में फैला रहे हैं। विश्व की आत्माएं जिसको जो चाहिए शक्तियां उसके अंदर उतर रही है। शांति की प्यासी आत्माएं शांति का अनुभव कर रही है, प्रेम की प्यासी आत्माएं परमात्मा से रूहानी प्यार अनुभव कर रही है। शक्ति की प्यासी आत्माएं परमात्मा से दिव्य शक्तियां प्राप्त कर रही है। ये दृश्य कितना सुंदर है। सब आत्माएं अपनी आत्मिक स्वरूप में स्थित है। प्रत्येक आत्मा के ऊपर परमात्मा की दिव्य किरणें आशीर्वाद के रूप में बरस रही है। आत्माएं अपना घट भरती जा रही है। प्यारे पिता से सब आत्माएं मस्त होकर के मिल रही है। कितना अनुशुक्रिया का वाइब्रेशन विश्व को पहुंच रहा है। ये मिलन के वाइब्रेशन, संतुष्टि के वाइब्रेशन विश्व तक पहुंच रहे हैं। महसूस करें, हमारा एक एक वाइब्रेशन भी सेवा कर रहा है। श्रद्धा के वाइब्रेशन, ये शुभ संकल्पों के वाइब्रेशन, ये पवित्र वाइब्रेशन सारा विश्व इस वाइब्रेशन के अंदर सुकून महसूस करता है। मैं आत्मा कितना भाग्यशाली हूँ। परम पिता परमात्मा हमें भाग्य की लॉटरी देने के लिए आए हैं। हम आत्माएं मन बुद्धि की झोली पसारे परमात्मा से दिव्य शक्तियां दिव्य रतन अपने झोली पे समेट रहे हैं।